5386 का प्रातः क्लास, दूसरे केस का मध्यांत, 12 नंबर के रजिस्टर में पांचवा पेज मध्यांत में बात चल रही थी आत्मा क्या चीज है, ये मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा, दोनों एक ही है। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है, क्या कह देते हैं उनसे पूछो आत्मा क्या चीज है तो क्या कह देते हैं, आत्मा एक चमकता हुआ सितारा है जो प्रकृति के बीच में रहता है। इन आंखों से तो देख न सके, फिर किन आंखों से देखेंगे, बुद्धि की आंख से क्या दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा बुद्धि की आंख से, चमकता हुआ सितारा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, फिर उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, सबकी आत्माएं क्या दिखाई पड़ेंगी, स्टार जैसी चमकता हुआ सितारा दिखाई पड़ेंगी, और तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगी। कीड़े मकोड़ों की आत्माएं वो भी स्टार मिसल दिखाई पड़ेंगी, और तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे। इन आंखों से देख नहीं सकते तो बुद्धि की आंख से क्या देखना है, स्टार मिसल सितारा ही देखना है बस। बुद्धि की आंख इतना ही देख सकती है, कोई स्टार है बस और कुछ नहीं। भले कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदमी बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे, परंतु किसको भी पता नहीं पड़ सकता है कि आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं कि स्टार मिसल है, मनुष्य मात्र जानते नहीं है, सिर्फ इतना कहते हैं कि स्टार मिसल है, भक्ति के बीच में चमकता है एक अजब सितारी, तो भक्ति मार्ग में भी कहते थे। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी यही कहते हैं, क्या आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगड़ उसको देखा नहीं जाता है। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, परमात्मा अखंड ज्योतिर्मय है। क्या साक्षात्कार हुआ कि परमात्मा की ज्योति अखंड ज्योति से भरी हुई, भरी पूरी है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजोमय, एक सूर्य का प्रकाश एक सूर्य की तरफ तो देखना मुश्किल हो जाता है, और हजारों सूर्यों की ज्योति तेज इकट्ठा कर दिया जाए तब तो देखना ही बड़ा मुश्किल है, अंधा ही हो जाएगा आदमी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कोई है नहीं, वो तेज वो कोई ज्योति स्थूल ज्योति नहीं है, काहे की ज्योति है, वो तो ज्ञान की ज्योति है। ज्ञान इतना तीखा होता चला जाता है, क्या पहले मीठा मीठा ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा, और फिर ज्ञान इतना तीखा होता चला जाता है, इतना तीखा होता है कि आत्माएं उस ज्ञान की तलक को, तीव्रता को सहन नहीं कर सकती। तो उसको कह दिया है बहुत तेजोमय है। बाकी ऐसा कोई तेजोमय आदि स्थूल तेज नहीं है, जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ा ही पड़ता है। अब तुम जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं, और मनुष्य आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है वो प्रवेश करती है तब तो फिर भी पता चलता है, क्योंकि चेहरा हमारा बदल जाता है। और सुप्रीम सोल वो आत्मा जब आकर प्रवेश करती है तो पता भी नहीं चलता कब आई और कब चली गई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का तो दबाव भी नहीं पड़ता, क्योंकि है ही नहीं उनको सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर, तो दबाव पड़ने का सवाल नहीं। इसलिए वो आत्मा गुम भी नहीं होती जिसमें प्रवेश करते हैं, और उसमें कोई झटका आदि भी नहीं लगता। तो तुमको मालूम है बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं, आत्मा आकर के बोलती है। तो ये भी ड्रामा में सारी नूद है, इसमें कोई की ताकत की बात नहीं है। कि शिव बाबा में इतना ज्ञान है, ये कोई ज्ञान बल बहुत भरा हुआ है, कोई खास खासियत हो गई, ऐसी बात नहीं। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, ऐसे ही सुप्रीम सोल में भी ज्ञान का पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, ये तो साक्षात्कार की बात है। जब साक्षात्कार होता है तो ऐसे नहीं कि आत्मा कोई शरीर छोड़ करके चली जाती है सूक्ष्म बतन में, नहीं। जैसे स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखते समय क्या आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है? नहीं, श्वास प्रश्वास कोई बंद थोड़ी हो जाती। तो ऐसे ही साक्षात्कार में भी आत्मा कहीं जाती नहीं है, ये तो आत्मा की एक स्टेज है, जिस स्टेज में वो आत्मा साक्षात्कार करती है। तो वंडरफुल बात है, एक इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी थे, तो चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूं। कैसे तन में आता हूं? साधारण तन में, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े राजाओं जैसे शरीर में नहीं आता हूं। साधारण तन में आता हूं। ब्रह्मा का तन गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा राजाओं जैसा नहीं था क्या? साधारण तन, उनका भी साधारण, फिर असाधारण तन किनका हुआ? अगर ब्रह्मा का गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा शरीर भी साधारण तन हुआ तो फिर असाधारण तन किसका कहेंगे? कोई पार जैसा आदमी होगा उसका असाधारण तन कहेंगे क्या? रामकृष्ण का असाधारण कहेंगे, वो कहां देखने को मिलेंगे? इस दुनिया की बात है कि त्रेता और सत्य की दुनिया की बात है? जिस साधारण तन में आता हूँ वो इस दुनिया की बात है या उस दुनिया की बात है? इस दुनिया में साधारण तन और असाधारण कौन? असाधारण तन किसे कहेंगे और साधारण तन किसे कहेंगे? साधारण तन माने जैसे सामान्य मनुष्य होते हैं, न कोई ज्यादा बहुत आकर्षण है, न कोई बहुत ज्यादा गोरा चिट्ठा है, न कोई ज्यादा डौल डील वाला है कि कोई राजाओं महाराजाओं जैसी पर्सनैलिटी हो, ऐसा भी नहीं, साधारण पर्सनैलिटी। तो क्या ब्रह्मा के तन में नहीं आया? आया, फिर यहां क्यों कह दिया? फिर क्यों कह दिया? ये झूठ क्यों बोला? परमात्मा बाप भी झूठ बोलते हैं। हाँ, समझने वाले, तो इसमें क्या समझने की बात है? यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, क्या समझने वाले समझ गए हैं सो बताओ। उनकी सेकेंडरी ब्रह्मा को प्राइमरी क्या? नहीं तो ब्रह्मा में क्या शिव परमात्मा ज्योति बिंदु ने प्रवेश नहीं किया? फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ है? सेकंड टाइम आया। अच्छा, सेकंड टाइम में सही आया तो साधारण तन तो भले नहीं, लेकिन साधारण तन नहीं था, असाधारण तन सौंदर्यवान होता है माता का। स्त्री और पुरुष में सौंदर्यवान कौन होता है? स्त्री सौंदर्यवान होती। तो ब्रह्मा का तो गोरा चिट्ठा चेहरा जब मुरली सुनाते थे, देखने वाले देखते ही रह जाते थे। मुरली में क्या चल रहा है, उसका क्या अर्थ है, उसमें क्या गहराई, ये किसी को सोचने की फुर्सत भी नहीं थी, इतना आकर्षण था। तो कुछ बन गए मुख वंशावली और कुछ बन गए कुख वंशावली। जो मुख कोई देखते रहे उनकी गोदी ही उनको आज तक याद आ रही है, वो हो गए कुख वंशावली। और जिन्होंने उस मुख की तरफ आकर्षण नहीं किया बुद्धि का, सिर्फ जो उस मुख से ज्ञान की धारा बही, उस ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन मंथन किया जैसे मम्मा, तो वो आत्मा क्या हुई? मुख वंशावली। तो दो प्रकार के ब्राह्मण हुए, कुख वंशावली और मुख वंशावली। तो अब ये बात यहां चल रही थी कि बाप कहते हैं कि मैं भी साधारण तन में आता हूं, तो क्या ब्रह्मा के तन में नहीं आया? आया, लेकिन यहाँ कहते कौन है? बाप कहते हैं। और ब्रह्मा के तन में किस रूप में आया? माँ के रूप में आया। तो माँ का तो तन असाधारण ही होता है, असाधारण सौंदर्यवान होता है। जो जगत की माँ होगी तो उसका सौंदर्य कोई साधारण होगा क्या? असाधारण सौंदर्य होना चाहिए। तो वो तो माँ के रूप में आया, यहाँ कौन कहता है? बाप कहते हैं। यानी बाप बाप के रूप में जब आता है तो साधारण तन में आता है, असाधारण तन में नहीं आता। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए, अब क्यों नहीं पूछते? अब किसी ने आत्माओं का आवाहन क्यों नहीं करते? पहले आवाहन करते थे, अब आवाहन नहीं करते, क्यों? हाँ, जो बुलाने वाले हैं वो भी तमो प्रधान बन जाते, और जिनमें आवाहन करना है, प्रवेशता करानी है, वो भी तमो प्रधान हो गए, और जो आने वाली आत्मा है वो भी तमो प्रधान हो जाती, फिर प्रवेशता बंद हो जाती। आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना, बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। आने का मकसद क्या है बाप के आने का? वो जो आत्मा मनुष्य आत्मा आती है, वो आते आते खुद ही तमो प्रधान बन जाती। प्रवेश करने वाले भी तमो प्रधान बनते, प्रवेश करने वाली आत्मा भी तमो प्रधान बनती। और यहाँ बाप किस लिए आते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं, ये नहीं सुनाया कि ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं ना। हम इसलिए बुलाते हैं, हम बुलाते भी किस लिए? हे पतित पावन आओ, ये नहीं कहते आकर ज्ञान सुनाओ। तो आते भी इसलिए हैं कि आज जाकर के पतितों को पावन बनाएं। कहां जाकर के, किस लिए आते हैं? बाप आते हैं साधारण तन में, तो किस लिए आते हैं? मकसद क्या होता है? अहम ऑब्जेक्ट क्या होता है? पतितों को पावन बनाने। और ब्रह्मा के तन में आए और अहम ऑब्जेक्ट पूरी नहीं हुई तो कहेंगे कि बाप आया, बाप आया। बाप नहीं आया बाप के रूप में, माँ के रूप में आया। बाप जब बाप के रूप में आता है तो पतितों को जाकर पावन बनाता है। जिसलिए आया और वो काम पूरा किया नहीं तो सर्वशक्तिवान बाप साबित हुआ है? फिर बाप साबित नहीं हुआ। बाप होता है घर का मुखिया, बाकी सब परिवार की उतनी शक्ति औरों के हाथ में नहीं सौंपी जाती। तो ये भी जो ब्रह्मा का परिवार है, ये बेहद का परिवार, इस बेहद के परिवार में सुप्रीम सोल बाप आते हैं। बाप बनकर जब आते हैं तो उनका मेन एम ऑब्जेक्ट क्या है? पतितों को पावन बना। अब बिना पावन बनाए ही बीच में चले जाए, साधारण तन भी खत्म हो जाए, जिस तन में आए वो तन भी खलास हो जाए, तो कहेंगे कि उनका मकसद पूरा हुआ, एम ऑब्जेक्ट पूरा हुआ? नहीं। तो कहा कि बाप आते भी इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कैसे भी है 84 जन्म, तो जब 84 जन्म कहते हैं तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो सतयुग के आदि से आए होंगे उन्होंने 84 जन्म लिए होंगे। और यहाँ ज्ञान में कैसे समझे, इस बात को ज्ञान में कैसे समझा जाए, शूटिंग पीरियड में कैसे समझा जाए कि कौन सी आत्मा 84 जन्म लेने वाली है और कौन सी कम जन्म लेने वाली है? हाँ, जो यज्ञ के आदि में पहले पहले आए थे, पहले भी थे और फिर अंत में भी होते हैं, आदि से अंत तक उनका पार्ट होता है, यानी ऑलराउंड पार्ट होता है, तो वो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। बाकी जो बीच में आई और बीच में चली गई, वो ऑलराउंड 84 जन्म का पार्ट लेने वाली आत्मा है? नहीं है। वो साधु सन्यासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से ऐसे साधु सन्यासी हैं जो हजारों लाखों वर्ष कह देते हैं? कोई कहते हैं? हैं? नहीं कहते? वाह, एक होता है मुख से कहना, एक होता है कर्म से कहना। अगर बिल्डिंग बनाते चले जाएं, अंडरग्राउंड बनाए, अपर ग्राउंड बनाए, ऊंची ऊंची लाखों करोड़ों की बिल्डिंग बनाते चले जाएं, माउंट आबू की बात नहीं कहते हैं। माउंट आबू के बाहर दूसरे शहरों में तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर बिल्डिंगें बनती चली जाएं, करोड़ों रुपया उनमें लगाया जाए, तो या ये उनके कर्म ये साबित कर रहे हैं कि दुनिया का विनाश होना है? है? दुनिया का विनाश अभी जल्दी होना है, ये कर्म साबित हो रहा है कर्म से? नहीं। तो कर्म आदमी विपरीत करे और मुख से कहे कि विनाश होना है तो कोई मानेगा? तो ये कर्म से कहना हो गया, चलन से ये कहना हो गया। इसलिए बोला कि वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, मुख से भल नहीं कहते हैं लेकिन चलन से कह देते हैं, उनकी चलन से ये बात साबित हो जाती है कि अभी अभी ये दुनिया विनाश होने में बहुत समय लंबा पड़ा हुआ है। अब बात समझाते हैं, तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया है, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग में आता हूं, माना संगम युग युग आता हूं, कल्प के संगम युग युग। कभी कभी बोलते हैं कल्प 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 के संगम युग आता हूं, तो ऐसे बार बार कल्प शब्द बोलने की क्या जरूरत है? जरूर शूटिंग पीरियड में हर युग में एक कल्प समाया हुआ है, हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, माने चार युग समाये हुए, तो हर युग की शूटिंग एक कल्प हो जाता है। तो हर कल्प के बाद परमात्मा बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सत्युग की शूटिंग कब पूरी हुई? 76 में, 40 वर्ष के बाद, या सर्विस के हिसाब से कहें तो 16 वर्ष के बाद, 60-61 से सेवा तीव्र गति से शुरू हुई, आत्माओं की जनरेशन सिंध हैदराबाद से आगे बढ़ने लगी, सिंध हैदराबाद में थे 9 लाख उस समय की आबादी जिनको संदेश मिला, वो जनरेशन तीव्र गति से फिर आगे बढ़ी 60-61 से, जब से चित्र बनना शुरू हुए, छपी हुई पुस्तकें सामने आई, तो प्रजावर्ग की आत्माएं निकलने लगी संदेश लेकर। उस समय से लेकर के 76 तक 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला। तो सत्यु की आत्माओं को शूटिंग करने का मौका मिल गया, तो वो एक कल्प हुआ। चार अवस्थाओं में चार प्रकार की आत्माएं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो वर्ण के देवताएं, देवात्माएं यज्ञ में आ गए। तो 76 में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है, किस रूप से? बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। शिव जयंती मनाई जाती है भारत में, लेकिन कौन सा टाइम? रात्रि के 12 बजे। तो शिव वास्तव में रात्रि के 12 बजे आता है, लेकिन क्या कहें कि ज्ञान सूर्य रात्रि के 12 बजे निकलता है? ये मान्यता विदेशों में है कि दिन की शुरुआत वो कब से मानते हैं? रात्रि के 12 बजे। तो 76 में अव्यक्त वाणी में उस समय बोलना शुरू किया आसपास कि विदेशियों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। तो उन्होंने समझ लिया बाहर की दुनिया के जो विदेशी हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अरे बाहर की दुनिया के विदेशी ने तो बाप को पहचाने नहीं, वो प्रत्यक्ष क्या करेंगे? ये तो बाप के माला के मणके बनने वाले बच्चे हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं 76 में। वो ब्राह्मणों की दुनिया में वो बाप कहां बाप के रूप में पार्ट बजाता है, कहां प्रत्यक्ष होकर के वाणी में आता है जो पहले वाणी से परे हो गया था 68-69 में 18 जनवरी को। वो वानप्रस्थी बाप जब वाणी में आता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो बाप किस रूप में प्रत्यक्ष हुआ? शिव जयंती माना शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, यही स्वरूप एक बाप का ऐसा रूप है जो सारी दुनिया में जिसकी मूर्तियां आज भी खुदाई में मिल रही हैं, और किसी दूसरे देवता की इतनी ज्यादा तादाद में मूर्तियां नग्न मूर्तियां नहीं मिल रही। जैसे शिवलिंग हर जगह पाए जा रहे हैं, वैसे ही वो नग्न मूर्ति भी शंकर की दुनिया के हर क्षेत्र में पाई गई। तो इससे साबित हुआ कि प्राचीन से प्राचीन परमात्मा का जो जयंती का जो रूप है, जन्म दिवस का, जयंती तो हमेशा साकार की मनाई जाती है कि निराकार की जयंती होगी है? आत्मा प्रवेश करती है तब जयंती होती है, या बच्चा जब बाहर आता है प्रत्यक्ष होता है तब जयंती होती है? गर्भ में आत्मा ने प्रवेश किया तब जयंती नहीं होती। तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया हो या ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद शिव की आत्मा ने किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पाठ बजाया हो, जैसा व्यक्तवाणियों से साबित होता है, तो उसको प्रवेशता को जयंती नहीं कहेंगे। जयंती कब कहें? जब वो प्रत्यक्ष हो। और प्रत्यक्ष कैसे होता है? मुरली में प्रश्न किया है, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? इनमें माने ब्रह्मा में या प्रजापिता में, इनमें माने बहुवचन, तो इनमें कैसे मालूम पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जवाब दिया, जब ज्ञान सुनाते हैं, जब नॉलेज देते हैं कि ऐसी नॉलेज और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता, तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये बात लागू होती है कि बाप बाप के रूप में तब प्रत्यक्ष होते हैं, कैसे मालूम पड़े? जब वो नॉलेज देते हैं तो उस नॉलेज से ही पता पड़ता है कि ऐसी नॉलेज कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं सुना सकता जो बाप सुनाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ताकत नहीं जो ऐसी नई बातें बताए, बहुत पुराने शास्त्रों की बातें बताएंगे, बाकी कोई नई बात नहीं बता सकते। तो सचिव की शूटिंग का जो कल्प हुआ उसमें शिव बाप उस रूप में प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन बाप का विरुद्ध है। बाप का विरुद्ध क्या है? फादर सो सन। बाप क्या करता है? बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा कि खुद पहले प्रत्यक्ष होगा? है क्या करेगा? पहले वो बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहता है, बच्चों को आगे करना चाहता है, और खुद को गुप्त कर देता है। इसलिए बच्चे तो भारत के हैं असली कि विदेश के हैं? बच्चे तो भारत के हैं ना, तो विदेशी बच्चे तो रात्रि के 12 बजे से जयंती मनाना, वो सूर्य का उदय मानते हैं, नए दिन की शुरुआत मानते हैं, लेकिन भारतवर्ष में रात्रि के 12 बजे से नए दिन की शुरुआत नहीं है। जब सूर्य उदय हो जाता है प्रत्यक्ष रूप में, तब कहते हैं कि नए दिन की शुरुआत हुई। तो वास्तव में जो कृष्ण का जन्म का टाइम है वो अमृत वेले का है। क्या उस सतयुग के कृष्ण की बात नहीं है? वो तो स्थूल सतयुग का दिन होगा। यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो कृष्ण की सोल किसी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, और जिस समय प्रत्यक्ष होती है वो होता है अमृत वेले का पीरियड। कब? शास्त्रों में कौन सा पीरियड लिखा है कृष्ण के प्रत्यक्ष होने का? द्वापर। कहते हैं कृष्ण द्वापर में आया, इसका राज क्या है? शास्त्रों में क्या ये बात झूठी लिखी हुई है? बाबा तो कहते हैं शास्त्रों में, भागवत महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है, इस समय तुम उसको टैली कर सकते हो। तो कृष्ण द्वापर में आया, क्या ये झूठा हुआ? झूठा नहीं हुआ। वास्तव में शूटिंग के पीरियड का ज्ञान नहीं है शास्त्रकारों को कि परमात्मा वास्तव में कब आता है और कैसे क्या करता है। वास्तव में जब त्रेतायु की शूटिंग पूरी हो जाती है 76 से लेकर के 89 तक, 88-89 तक, तो उस समय द्वापर शुरू होता है, द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है, और उस समय कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। यानी ब्रह्मा की सोल जो ब्रह्मा के रूप में मृत्युलोक में अभी तक कार्य कर रही थी, कब तक? 88-89 तक। ब्रह्मा मृत्युलोक में समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्मा की मृत्युलोक की आयु 88-89 में पूरी हो जाती। तो मृत्युलोक में जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई तो कहां जन्म लेगा? अमरलोक में जन्म लेगा, बैकुंठ में जन्म लेगा। तो वो आत्मा 88-89 में किसी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में ही प्रत्यक्ष हो जाती है। कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है भागवत के द्वारा। भागवत का अर्थ है वो जो भागवत महाभारत कथा लिखी, भागवत कथा लिखी हुई है, कृष्ण की बायोग्राफी की कथा, जीवन कहानी की कथा, उसमें एक ही अध्याय ऐसा जुड़ा हुआ है जिसमें जिसके आधार पर उसका नाम भागवत रखा गया। उस अध्याय में क्या दिखाया है, उस काम के आधार पर उसका नाम पड़ा है। क्या दिखाया है, भागवत का अर्थ ही है भगवान के द्वारा जो किया गया। क्या किया गया, भगाया गया। किसको भगाया गया, गोपियों को। गोप और गोपियां भागे उनके पीछे, दामा श्री दामा बलराम जैसे, और गोपियां जात जाति की सखियां। तो भागी का मतलब उन्होंने तो लगा दिया है कि कृष्ण ने कोई हाथ पकड़ करके भगाया होगा। या मनुष्य समझते हैं कि जैसे हम बरारत भगाते हैं वैसे भगाया होगा, जैसे दुनिया में भगाते हैं, लेकिन नहीं। कृष्ण को तो योगी राज कहते हैं। योगी राज योग बल के आधार पर आत्माओं को आकर्षित करेगा या देवान के आधार पर भगाएगा, उसके भगाने की गतिविधि क्या होगी, वो तो योग बल के आधार की बात है। योग के आधार पर आत्मा स्वतः ही आकर्षित होती है, और आकर्षण करने वाले का नाम कृष्ण है। क्या, जैसा नाम वैसा काम होगा, तो शास्त्रों में नाम पड़ा है, नहीं तो नाम नहीं पड़ सकता। तो 88-89 में वो भागवत ब्राह्मणों की दुनिया में जब प्रत्यक्ष होती है, तो कृष्ण का जब जन्म होता है तो जैसे बिजली सी कौंध जाती है। बादल आकाश में होते हैं, जब रात में बिजली कौंधती है अंधकार में, तो एकदम चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है और फिर अंधेरा। तो इसी तरीके से 88-89 में ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कोई अजूबा गरुबा होता है, तो वो कृष्ण की सोल भागवत मचाने वाली वो प्रत्यक्ष होती है और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर में कृष्ण आया, तो उस कृष्ण बच्चे के द्वारा फिर बाप भगवान प्रत्यक्ष होता है। तो ये भी हुई शिव जयंती, माना बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन पूरी प्रत्यक्षता अभी भी नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि भारतीय परंपरा में मनुष्य को तब तक संपूर्ण नहीं मानते जब तक कि उसकी गांठ न जुड़े किसी के साथ। वो अधूरा है, निवृत्ति का है, प्रवृत्ति का मन प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है। क्योंकि जो भी अनुष्ठान भारतीय परंपरा में किए जाते हैं वो सफल तब माने जाते हैं जब पत्नी के साथ है, प्रवृत्ति में रह करके अनुष्ठान किया गया हो। तो कृष्ण अकेला या डबल 88-89 में क्या कहें उसे, वो अकेला प्रत्यक्ष हुआ या डबल होके प्रत्यक्ष हुआ, अकेला ही तो प्रत्यक्ष हुआ ना। अब सतयुग में तो राधा कृष्ण बच्चे साथ साथ पैदा होंगे, लेकिन ये तो यहाँ की बात है संगम युग की, कि राधा और कृष्ण के जन्म में 3-4 साल का अंतर होगा, ऐसा मुरलियम बोला। तो जो 3-4 साल का अंतर बताया है, इसका मतलब है कि 92-93 का जो पीरियड है वो राधा की चंद्रवंश में जन्म लेने वाली राधा की प्रत्यक्षता का पीरियड है। तो राधा भी प्रत्यक्ष हो, और सिर्फ प्रत्यक्ष होने से कार्य नहीं चलेगा, वो राधा और कृष्ण दोनों का स्वयंवर जब हो तब कहेंगे कि पूरी प्रत्यक्षता ब्राह्मणों की दुनिया में हो। तो द्वापर युग की शूटिंग का पीरियड है 8 वर्ष, सतयुग की शूटिंग का पीरियड 16 वर्ष, त्रेता युग की शूटिंग का पीरियड 12 वर्ष, और द्वापर कलयुग की शूटिंग का पीरियड 4 वर्ष। ये हिसाब शास्त्रों में भी दिखाया कि कलयुग से द्वापर की आय दुगुनी, द्वापर से त्रेता की आय तिगुनी, और सतयुग की आय 4 गुनी। तो ये बात कहाँ की है, बात भी यही शूटिंग पीरियड की है। तो इसलिए यहाँ बोला कि मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, और उन्होंने क्या लिख दिया गीता में, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। तो जब हर युग में आता हूँ, हर युग के अंत में, तो 4 अवतार होने चाहिए, कि 24 अवतार होने चाहिए, 4 अवतार होने चाहिए, 4 बार परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के विशेष रूप से बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो शिव शंकर के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो यानी विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष हो विष्णु अवतरण, और चाहे वो लास्ट में कलंकी अवतार के रूप में कलयुगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष हो। तो गीता में फिर युग युग लिख दिया है। अभी तुम जानते हो कि हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, कहाँ उतरते हैं, 5000 वर्ष में कि यहां भी शूटिंग पीरियड में हम सीढ़ी उतरते हैं, यहां भी शूटिंग पीरियड में हम ब्राह्मण सीढ़ी उतरने का क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। कोई तो सीढ़ी धीरे धीरे उतरते हैं और कोई सीढ़ी बहुत तेजी से उतरते हैं। धीरे धीरे कौन उतरते हैं और तेजी से कौन उतरते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं में ही, देवात्माओं में ही ऊपर से आने वाली सतो प्रधान आत्माएं द्वापर युग से प्रवेश करके अपने धर्म की स्थापना करती है। वो जो ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्माएं हैं वो किसमें प्रवेश करेंगे, पावरफुल देवताओं में नहीं, किसमें प्रवेश करेंगे, जो तमो प्रधान हो जाते हैं, कमजोर आत्माएं बन जाती उनमें प्रवेश करके अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऊपर से आने वाले तो 500 करोड़ और नीचे कितने हैं, वो 33 करोड़ ही है। तो पता नहीं कि उन 63 जन्मों में एक एक में कितनी कितनी बार प्रवेशता होती, तो कोई कोई तो बहुत जल्दी जल्दी तमो प्रधान बनते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो उनमें सोल प्रवेश करती है और अपने धर्म की स्थापना करती है। जो भी नई सोल आएगी वो प्रवेश करेगी। तो कोई आत्मा ऐसी भी होती है जो परमात्मा बाप से विशेष प्रीति रखती है, विशेष प्रीति होने के कारण उनको विशेष याद का बल मिलता है, और जब याद का बल मिलता है तो वो ज्यादा तमो प्रधान नहीं बनती, धीरे धीरे उनका उतरना होता है, उनमें कोई ऊपर से आने वाली शक्तिशाली सोल प्रवेश नहीं कर सकती। तो यहां बताया कि तुम जानते हो कि हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, कैसे उतरते हैं, हम धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं, इसलिए हमारा पतन धीरे धीरे होता है, और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं उनका पतन तेजी से होता है। तो उतरना तो है ही, कोई की उतरने की गति धीमी होगी और कोई की उतरने की गति फास्ट होगी। अभी तुम्हारी है तरती कला, फिर उतरती कला होगी, अभी ये है सर्व की सब चरती कला का पीरियड। क्या, कौन सा सर्व की चरती कला, कब चरती कला, तेरे दहन है सर्व का भला, यानी उससे तेरे को जब पहचान लिया, तेरे कौन, चोटी का ब्राह्मण जिसमें परमात्मा बाप आकर के सारी दुनिया की चरती कला करते हैं, तो उस स्वरूप को जब पहचान लिया तो सर्व की चरती कला का पीरियड हो जाता है, सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, यानी सबकी ऊंची स्टेज बनेगी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने के लिए। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, जब आएंगे नई दुनिया में तो उस समय दूसरे प्रकार की कोई भी धारणा नहीं होंगी, एक प्रकार की धारणा, एक ही धर्म और एक ही धर्म सत्ताधीश, एक ही राज्य सत्ताधीश, एक ही भाषा, एक ही मत होगा। अभी ब्राह्मण की दुनिया में क्या है, सब बातों में अनेकता है। तो जब एकता थी तो उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, क्या कहा जाता है, निर्विकारी दुनिया, और अभी अभी अनेकता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनेकता है, आधार मूर्तों की दुनिया में भी, तो बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी में भी अनेकता है, ऐसे नहीं कि यहाँ कोई एकता है। एडवांस नॉलेज लेने के बाद भी कोई किसी रीति से समझता है, कोई किसी रीति से समझता है, तो मुझ भी जाते हैं कि सच्चाई वास्तव में क्या है। तो उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, जो नई दुनिया होती है, वहां कोई विकार नहीं होते तो वहां फिर अनेकता भी नहीं होती, जहां विकार होंगे तो अनेकता भी देखने में जरूर आएगी, अनेकता मन वाचा की अनेकता, जब वाचा की अनेकता होगी तो वाचा से वाचा टकराएगी जरूर, कर्मणा की अनेकता होगी तो एक एक कर्म करना अच्छा समझेगा, दूसरा उस कर्म को बुरा समझेगा। तो कर्मों में भी टकराव, संकल्पों में भी टकराव होगा, क्योंकि बाप समान संकल्प नहीं है। जब बाप समान संकल्प नहीं है, हमारा संकल्प कुछ और बाप का संकल्प कुछ और, तो वाइब्रेशन जरूर टूटेंगे। और वाइब्रेशन जब टूटेंगे तो उसका असर दुनिया में अच्छा नहीं पड़ सकता। हम ब्राह्मणों के वाइब्रेशन एक होने चाहिए, जो बाप का संकल्प वो हम बच्चों का संकल्प होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये लगा लिया जाए कि ज्योति बिंदु बाप का जो संकल्प सो हमारा संकल्प, तो बिंदु बाप का संकल्प कैसे पहचाना जाएगा? बिंदु बाप का संकल्प कैसे पहचाना जाए कि वो इस समय क्या चाहता है? ये बिंदु बाप की बात नहीं है, ये बिंदु बाप जब साकार में आकर के बच्चों के सामने आकर के एक्ट करता है, वाणी बोलता है, तभी ही परखा और जाना जा सकता है कि बाप क्या चाहता है और हम बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। ये बात प्रत्यक्ष हो जाती है, क्योंकि ये ब्राह्मणों का संगठन, ब्राह्मणों का किला शीशे का किला बन जाएगा, शीशे का महल बन जाएगा। इसमें कोई भी अपने को छुपा नहीं सकता, अंदर से एक और बाहर से दूसरा चलने वाला छिप नहीं सकता। तो बताया कि जब एक ही धारणा थी तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, कोई विकार नहीं था। यथा राजा रानी तथा प्रजा होती, क्या अगर राजा रानी में ही मतभेद होगा तो प्रजा में भी मतभेद जरूर होगा। तो यहाँ भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी अभी क्या कहें कि मतभेद है या नहीं है? अगर माता पिता के बीच में भी मतभेद है तो बच्चों में भी जरूर मतभेद होगा। एक धारणा अगर माता पिता की नहीं है तो बच्चों की भी एक धारणा नहीं हो सकती, एक जैसे संकल्प नहीं हो सकते। तो बाप समझाते हैं, क्या बताया, यथा राजा रानी तथा प्रजा। हर माँ बाप अपने घर का क्या होता है? हर बाप अपने घर का राजा होता है, हर माता अपने घर की रानी होती है। तीसरा पेज 5386 की वाणी, 12 नंबर के रजिस्टर में छठा पेज। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम ही वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, निर्विकारी दुनिया में थे। उस समय यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी थी, वॉइसलेस थी, एक मत वाली थी। अब यह है विशेष वर्ल्ड, ये दुनिया कैसी है? विकारी दुनिया, बाहर की दुनिया कि ब्राह्मणों की दुनिया? ब्राह्मणों की दुनिया भी विकारी है, आधार मूर्तों की दुनिया या बीज रूप एडवांस पार्टी वालों की दुनिया, दोनों ही विकारी है, दोनों ही विशेष है। अनेक धर्म है, क्योंकि अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, एक प्रकार की धारणा है नहीं। होना क्या चाहिए? जो बाप धारणा कराना चाहता है वैसी धारणा होनी चाहिए, जो बाप संकल्प चलाता है वैसे संकल्प होने चाहिए, जो बाप की भाषा है, जो बोलचाल है, वो बच्चों की भी बोलचाल होनी चाहिए। तो वो नहीं है, बाकी एक देवी देवता धर्म कैसे कहा जाए, वो तो है ही नहीं। जरूर जब न हो तो फिर से स्थापन करना पड़े, नहीं है तो जरूर क्या साबित होता है, जरूर उसकी फिर से स्थापना करनी पड़े। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो पिता हो गया। पिता अलग होता है, ब्रह्मा अलग होता है। माँ, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, प्रजापिता माने सारी सृष्टि का पिता। ये थोड़े ही कहा प्रजापिता द्वारा, हाँ उसके साथ प्रजापिता होगा। ब्रह्मा विनाशकारी वाणी चलाने वाला होगा, हाँ वाणी से मतलब थोड़ा ही है, यहाँ मतलब यह है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होगी। तो ब्रह्मा कौन सा है? आदि में जो ब्रह्मा, जो माताएं थी, जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, डायरेक्शन देती थी, वो तो आदि ब्रह्मा हो गए, वो तो गए। उसके बाद 68 में जैसे बाबा ने बोला कि भारतवर्ष में एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी भी कर लेते, एक जूती गई तो कहते हैं हम दूसरी जूती लेते हैं, ऐसे मुस्लिम बोला या नहीं? तो बोलो, तो ये इशारा कहां के लिए दिया कि ये भी पुरानी जूती है? कौन? ब्रह्मा का तन। तो ये हो गई दूसरी जूती। फिर जरूर बाप को अगली जूती लेनी पड़े, तो तीसरा तन हुआ। फिर शंकर का तन, उसको ब्रह्मा कहेंगे कि प्रजापिता कहेंगे? सिर्फ वो तो प्रजापिता हुआ। प्रजापिता भी तब होगा जब 108 आत्माओं का संगठन सामने हो, सारी दुनिया का पिता है। चलो 500 करोड़ का पिता साबित नहीं होता, तो कम से कम 500 करोड़ की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो तो आपस में भाई भाई होकर के देखने में आए, तब तो पिता साबित होगा। चलो बीज रूप आत्माओं का पिता है तो भी मान लिया जाए कि हाँ, सारी दुनिया के जब बीज इकट्ठे हो गए, आपस में भाई भाई देखने में आ रहे हैं नजर, तो पिता भी है, तब तो प्रत्यक्ष होगा। तो पिता की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात किसकी है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये नहीं कहा प्रजापिता द्वारा स्थापना। प्रजापिता वर्षा देने के लिए प्रजापिता होगा, लेकिन प्रजापिता का रूप तो परमात्मा बाप का ही रूप हो गया। वो वर्षा देने वाला तो है पिता, लेकिन किसके द्वारा देता है? ब्रह्मा द्वारा। तो तीसरा कौन सा हुआ? जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ये मुरली में बोला हुआ है। क्या? जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो गुलजार दादी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तो गुलजार दादी में तो शिव की सोल नहीं आती, आई होती तो उसका नाम क्या होता? ब्रह्मा होता। तो वो कोई ब्रह्मा का रथ नहीं है, वो शिव का रथ नहीं है ब्रह्मा। हाँ, उसमें ब्रह्मा की सोल आती है, बाकी शिव की सोल नहीं। तो तीसरा अर्थ भी चाहिए। तो तीसरा अर्थ क्या हुआ? प्रजापिता के साथ जो ब्रह्मा हो। फिर आगे चल के ऐसा भी ब्रह्मा हो जो ब्रह्मा सो एक सेकंड में विष्णु बन जाए, तो ब्रह्मा की कितनी फास्ट गति? एक सेकंड में विष्णु। कोई तो होते हैं ज्ञान ले लेते हैं, बाप की पहचान ले लेते हैं, और फिर पहचानने के बाद भी निभाने में वर्षों लग जाते हैं, तब कहीं सही रूप से निभा पाते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। और कोई सोल ऐसी भी होती है पावरफुल कि अभी अभी ज्ञान लिया और अभी अभी हाई जंप लगाई, तो ऐसा भी ब्रह्मा निकलता है। कैसा? जो अभी अभी ज्ञान सुना, अभी अभी एडवांस नॉलेज लिया और अभी अभी लास्ट सो पास, एकदम हाई जंप लगाता है। ब्रह्मा सो क्या बन जाता? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता। जो गायन है क्या, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता। जनक के लिए क्या गायन है? एक सेकंड में जीवन मुक्ति। तो हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारी तो जीवन मुक्ति अभी नहीं हुई, और उनके लिए गायन क्या हो गया? एक सेकंड में जीवन। तो कोई तो हिसाब होगा कि ऐसे ही गायन हो गया, कुछ प्रैक्टिकल में होगा तब तो गायन होगा कि ऐसे ही हो जाएगा। तो ब्रह्मा द्वारा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, गलत फहमी ना हो जाए कि 68 से पहले जो ब्रह्मा था उसके द्वारा देवी देवता सनातन धर्म स्थापन हो गया। अरे स्थापन हो गया तो वो युगल कहां है? कौन? वो देवी देवता सनातन धर्म के युगल लक्ष्मी नारायण कहां है वो बताओ? तो ब्राह्मणों के परिवार की दुनिया में बात उड़ाई दी कि दीदी दादी जो है इन्हीं की प्रवृत्ति है, वो असिस्टेंट है और वो मुख्य प्रशासिका, वो सह प्रशासिका है, तो वो राजा हो गए, वो रानी हो गए। अरे सत्युग के आगे पीछे मरते हैं? सत्युग जो राजा रानी होंगे कैसे मरेंगे? साथ साथ जन्म लेंगे, साथ साथ शरीर छोड़ेंगे, वहां तो विधवा होते ही नहीं। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो राजा रानी जैसे एक गया, रानी गई चली, और वे बेचारे रड़ुआ हो गए, बुजुर्ग बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई है, उस ब्रह्मा का गायन नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, हाँ ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, नंबर वार ब्राह्मण तैयार हुए हैं, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म की या सूर्यवंश या चंद्रवंश की कंप्लीट स्थापना नहीं कहेंगे। कंप्लीट कब कहें? जब सूर्यवंशियों में जो लक्ष्मी नारायण है वो भी सामने दिखाई पड़े। बुद्धि से समझ लेना कि 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया, वो तो बात अलग, लेकिन प्रैक्टिकल में भी जब तक नहीं दिखाई दे तब तक मानेगा कौन? बाहर की दुनिया वाले तो नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी नहीं मानते। हाँ, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो बच्चे जरूर जो पहचान लेते। तो ब्रह्मा द्वारा आकर के आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, यहाँ शब्द आकर के लगा हुआ, ऐसे नहीं कहा जा करके, मैं आकर के ज्ञान सुना जाता हूँ फिर ब्रह्मा सो विष्णु अपने आप बनता रहता है, नहीं, मैं आकर के ब्रह्मा द्वारा, मीडिया कौन? ब्रह्मा, उसके द्वारा क्या करता हूँ? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेंगे ना, कि सूक्ष्म बतन में ऊपर करेंगे, इसी साकार सृष्टि पर करेंगे, सूक्ष्म बतन में तो नहीं करेंगे। यानी ऊपर की कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहाँ स्थापना का कार्य हो, स्थापना के कार्य की सेवा कहाँ होगी? यहाँ होगी। इसलिए कहा कि बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं, तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे। क्या कहा है? इस समय ब्राह्मणों को पावन कहेंगे? नहीं, तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर भी है उसी स्टेज पर, नंबर वार पतित कहेंगे, क्योंकि विकारी भी एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें भी सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान विकारी भी होते हैं। तो तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन तुम बन रहे हो, टाइम तो लगता है ना। मैं मां तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ये आर्फन बन जाते हैं। आर्फन किसे कहा जाता है? हैं? जिनका कोई धनी धोरी न हो, जिनका कोई मालिक न हो, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं।
तो लावारिस कहा जाता है?
लावारिस, उनका जैसे कोई वारिस नहीं है, वारिस होता तो लड़ते क्यों? अगर उनकी बुद्धि में ये निश्चय हो कि हमारा कोई वारिसदार, वारिस देने वाला, वर्षा देने वाला कोई बाप आया हुआ है, तो निश्चिंत होके रहेंगे, या उनको लड़ाई झगड़े की चिंता होगी कि हम ही लड़ झगड़ के ले लें? नहीं, उनको लड़ाई झगड़ा करने की क्या दरकार, उन्हें पता है कि हम बाप के वारिसदार बच्चे बन चुके, विश्व की बादशाही हमारे हाथ में, हमारे हाथ में रखी हुई, जैसे कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं, नई दुनिया का गोला दिखाते हैं, तो विद्ध रूपी हाथ है जिसमें विश्व की बादशाही जैसे सामने रखी हुई, हमको क्या लड़ने की दरकार। तो आर्पण बन जाते हैं वो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर के एक कैसे हो, क्या फिर क्या कहते हैं कि सब मिलकर के एक हो जाए, अरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे पड़े हैं हुए, और सब मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? क्या होना पड़े? जितने भी दूसरे धर्म के हैं उन सबका पत्ता साफ होना पड़े, सिर्फ आप ही बचे हैं। कितने बचे हैं? सिर्फ आप, आप में भी वैरायटी है, क्योंकि वो सब धर्मों के बीज हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, इसलिए अपने को थोड़ा ऐसा बनाव श्रृंगार करते हैं कि देखने में नहीं आते, परखने में उतना नहीं आते, थोड़ा अंतर होता जरूर है रत्नों में भी। तो पहले पहले जो युगल तैयार होगा वो जरूर एक युगल तैयार होगा। तो बताया सब मिलकर के एक कैसे हो? भाई भाई है ना, कौन कौन भाई भाई है? गाते हैं, गायन क्या हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो जब गाते हैं तो गायन कहीं का तो होगा, इसी दुनिया में, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं आकर के हिंदू बन जाती, उनमें से कोई एक होगा हिंदू महासभा का अध्यक्ष। फिर हिंदू तो अभी कहेंगे ना, अब तो हम ब्राह्मण बन चुके कि हिंदू है, है? अभी क्या कहेंगे, अभी तो हम ब्राह्मण बन चुके ना। तो वो ब्राह्मणों में भी कैटेगरी है, एक जैसे ब्राह्मण सब नहीं है। बीज रूप आत्माओं में भी अलग अलग धर्म के बीज हैं, सब एक जैसे बीज नहीं है। तो उन बीजों में से भी जो मुख्य धर्मों के बीज हैं, देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन, उनके चार के जो मुख्य चार भाई हैं, वो मिलकर के एक हो जाते हैं, क्योंकि वही ब्रह्मा की आदि संतान है। क्या अभी पीछे क्या बोला, 84 जन्म कौन लेंगे, जो आदि वाले थे वही 84 जन्म लेते हैं। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो एडवांस पार्टी की शूटिंग का कार्य चलता है, उसमें आदि कौन है, आदि कौन हुए, वो सब कैसे हो गए। सीढ़ी के चित्र में नीचे संगम को दिखाया गया, उसमें लिखा 40 वर्ष, 40 वर्ष पूरे होते हैं 76 में। तो 76 में जो 40 वर्ष का पीरियड पूरा हुआ, 40 ईयर का, तो ऊपर संगम युग अगला दिखाया गया। तो 76 से चार कुमार ऊपर दिखाए गए और कुमारियां भी दिखाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हुए, रुद्रमाला में से और विजयमाला में से। तो वो अष्ट नवरत्न तैयार होते हैं पहले पहले, जो आदि में थे वही अंत में फिर प्रत्यक्ष होते। 36-37 के आदि में भी यही आत्मा सबसे पहले इकट्ठी हुई थी, जो सारी सृष्टि के बीज हैं, उन बीजों की सहयोगिनी शक्तियां। तो जो आदि में थे वही अंत में फिर प्रत्यक्ष होते हैं। तो कहते हैं सब मिलकर के एक कैसे हो, अरे एक कैसे नहीं होंगे, भाई भाई है ना। क्या एक बाप के बच्चे हों, चार बच्चे हों और चारों लड़ाई लड़ झगड़ करके अलग अलग शहरों में इतनी लड़ाई लड़ी कि लड़ लड़ के सब अलग अलग शहरों में जाके बस गए, एक दूसरे से कोई मोह नहीं रहा। और फिर दुनिया में चारों तरफ हो हाहाकार विनाश, और कहीं वो आपस में मिल जाए तो फिर क्या होगा, दुनिया में चारों तरफ हाहाकार और विनाश हो जाए और उस टाइम पर वो आपस में मिल जाए तो क्या होगा, हैं? तो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे, ये खासियत है। और राम की जो सेना है बंदरों की, तो ये खास खासियत है। क्या कि आपस में चाहे जितना भी लड़ते झगड़ते रहें, लेकिन जब बाहर से कोई आक्रमण होगा तो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। इसलिए राम की सेना बहुत प्रसिद्ध है, किसकी सेना लेते हैं, बंदरों की सेना लेते हैं। बंदर ही मंदिर लायक बनेंगे, हाँ। तो सब कहते हैं कि सब मिलकर के एक कैसे हो, भाई भाई है ना। तो जो भाई भाई हैं तो खून तो एक ही बाप का है ना, तो जरूर ऐसा टाइम आता है ड्रामा में, ऐसा नूद है कि वो भाई सब आपस में मिलकर के एक होते हैं। सन्यासी लोग तो कहते हैं तुम सब फादर हो, या जब तक बाप को नहीं पहचानते हैं तो वो क्या कहते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, है तो वो विदेशी ना, विदेशी धर्मों के बीच। बाप को जब तक नहीं पहचाना तो क्या कहते हैं कि हमें ही बाप हैं। बाप पहले तो बाप को पहचाना, फिर आखिर तो विदेशी हैं, विदेशी उतनी गहराई से तो नहीं पहचान सकेंगे। तो जैसे मुर्गा सवेरे को सो जाता है, दाता गांव की आवाज की दूसरों को जगा दिया और खुद सो गया, तो ऐसे वो खुद सो जाते हैं, दूसरे धर्म की वो आत्मा जो पाप को प्रत्यक्ष करती है। अब रात्रि के 12 बजे तुम जग करके पुरुषार्थ करोगे तो अमृत वेले सोओगे नहीं तो क्या करोगे, है अनुभव है कि नहीं है, नहीं अनुभव है, अनुभव जरूर है। तो वो विदेशी जो है अमृत वेले का जब टाइम होता है तो सो जाते हैं, कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है तो वो सो जाते हैं। तो सन्यासी लोग तो कहते हैं तुम सब फादर हो, वो बाप को भूलने वाले, क्योंकि जब बाप की पहचान नहीं है तो कहते हैं हम ही फादर हैं। तो वो सन्यासी कहते हैं तुम हम सब, तुम सब फादर हो, आत्मा तो परमात्मा, माने इस दुनिया में हमको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। ये एडवांस पार्टी में ऐसी गति हो जाती है, चार धर्मों को चार बीज चारों अलग अलग हो जाते हैं, उनमें एक तो देवी देवता सनातन धर्म का बीज, उसमें तो परमात्मा आता ही है, बाकी जो तीन हैं वो उस बाप को भूल जाते। तो जब बाप को भूल जाते तो वो शिवो हम कह करके बैठ जाते, अपना अलग ग्रुप तैयार होता है। जैसा व्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला कि बाप दादा इस समय क्या कर रहे हैं, माला के अलग अलग ग्रुप्स तैयार कर रहे हैं। तो जो ग्रुप्स के हेड हैं वो क्या समझते हैं कि शिव हम ही शिव हैं, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अगर वो परमात्मा बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो परमात्मा सो हम आत्मा, शिव हम, ये सब परमात्मा के रूप हैं। क्या कह देते हैं कि हम सब क्या हैं, हम सब परमात्मा के रूप हैं। हाँ, कहाँ लीला करते हैं, कहाँ विषय विकार में गोते खाते हैं, क्या कहाँ तो लीला करते हैं सन्यासी, खूब डांस डांस करते हैं, और फिर कहाँ, फिर हाँ फिर तमो प्रधान बनते हैं तो और भिखारी बन जाते हैं, विदेशों में चक्कर लगाते हैं राज्यों को सिखाने के लिए, और ही ज्यादा गुड़ मरते हैं। तो जिधर देखो उधर राम ही राम ऐसे कहने लग पड़ते, बस ऐसे कहते डांस करते रहते। तो बाबा तो इन बातों का अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु इसने किए हुए हैं, किसने, ब्रह्मा ने। अब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, क्या कहते हैं अब बाप ब्रह्मा से, क्या कहते हैं अब किसी की बातों में, किसी की बातों के प्रभाव में मत आओ, इन सब गुरुओं को मारो, मारो गोली। गोली मारने का क्या मतलब, क्या पिस्तौल लेके, हाँ ज्ञान की गोली मारो, इनकी परवाह मत करो, क्योंकि गुरुओं का प्रभाव बहुत होता है। तो जो भक्त हैं बेचारे गुरुओं से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको साप दे देवे। तो भक्ति इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं, बाप कहते हैं सबको छोड़ो। अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, जब मैं मिल गया हूँ तो इन सब की परवाह मत करो, सर्व का सदगति दाता एक है। सच्ची अकाल कहते हैं ना, कौन कहते हैं, हैं? सिख लोग। और ये डायरेक्शन किसको दे रहे हैं, तीन गुरुओं को छोड़ो, किसको डायरेक्शन दिया, अरे ब्रह्मा को डायरेक्शन दिया। अरे वो भक्ति मार्ग के गुरु तो पहले ही छोड़ चुका, आप क्यों कह रहे हो, किन गुरुओं को छोड़ो,